आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्लास टेंथ के साइंस का थर्ड चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों अबाउट एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल्स जिनकी एक्टिविटी मिडल रेंज की होती है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके कार्बोनेट्स में से, उनके सल्फाइड में से, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और आप लोगों ने सबसे पहले ये तो समझ ही रखा हुआ है कि जो मिडल रेंज की एक्टिविटी के मेटल्स होते हैं उनके जो ओर होते हैं वो या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में, या फिर मेटल के सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर मेटल के कार्बोनेट के फॉर्म में। और कौन कौन से मेटल्स होते हैं जनरली मिडल रेंज की एक्टिविटी वाले? आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये जो मेटल्स होते हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव या फिर मिडल रेंज की एक्टिविटी वाले मेटल्स कहलाते हैं। अब आपको ये तो पता ही है कि मेटल का अगर ऑक्साइड हमारे पास हो तो हम उसे हीट करके, उसका ऑक्सीजन रिमूव करा करके बहुत ईजिली उससे मेटल प्राप्त कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो मेटल्स जिनका हमारे पास सल्फाइड है या फिर कार्बोनेट है उनसे हमें अभी मेटल प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट में से हमें मेटल ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि मेटल का ऑक्साइड चाहिए। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि हमें मेटल सल्फाइड और मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन करना है। मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा तो हम उसको रिड्यूस करा के हम प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिडिल रेंज की एक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं इसके सल्फाइड मिले हैं या फिर कार्बोनेट मिले हैं, तो हमें क्या करना है, हमें ऑक्साइड में इसे कन्वर्ट कराना है, फिर उसे रिड्यूस कराना है और मेटल कलेक्ट करना है। तो इसमें भी जो प्रोसेस होता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, इसके बारे में हमने समझा था। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि मेटल का जो कार्बोनेट है उसको हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में हीट करते हैं तो हमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एस्केप कर जाती है और इस मेथड को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर आप लोगों को याद भी मैंने करने का तरीका बताया था कि सी होता है दोनों में, कैल्सिनेशन में भी सी होता है और कार्बोनेट्स में भी सी होता है। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं उनमें कैल्सिनेशन होगा और वहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर यानी कि कम मात्रा एयर की हमें इस्तेमाल करनी है और मेटल का ऑक्साइड बनाना है हीटिंग करा के और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। और अगर मेटल का सल्फाइड हमारे पास है तो हम क्या करें उस केस में, आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर की मौजूदगी में, एक्सेस ऑफ एयर की मौजूदगी में मेटल सल्फाइड को हीट कराना है। तो अगेन आप लोगों को मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होगी वो इस केस में रिलीज हो जाएगी, एस्केप कर जाएगी और इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो रोस्टिंग क्या है, बेसिकली रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम मेटल के सल्फाइड को एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं और वहां पर फॉर्मेशन होता है मेटल के ऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एस्केप कर जाती है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 51 में ये जो टॉपिक है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, इसके अंदर ही रोस्टिंग का और कैल्सिनेशन का डेफिनेशन आपको दिया है। आप इनके डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब आप लोगों ने मेटल का ऑक्साइड कलेक्ट कर लिया कार्बोनेट या फिर सल्फाइड में से, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो मेटल ऑक्साइड मिला है उससे आपको प्योर मेटल प्राप्त करना है किसी भी तरीके से। या तो आप उसे हीट करें डायरेक्टली और ऑक्सीजन को रिमूव कराएं, या फिर आप क्या करेंगे, आप दूसरा कोई और एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे और इस मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को रिड्यूस करेंगे, मतलब मेटल ऑक्साइड को आप रिड्यूस करेंगे तो आपको मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया भी गया है पेज नंबर 51 पर, आप देख सकते हैं अगर आप लोग मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड सॉलिड का रिएक्शन कराएं कार्बन सॉलिड के साथ, तो वहाँ पर जैसे ही रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, आपको जिंक सॉलिड मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस मिल जाती है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन है उसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया और हमें वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ जिंक का, जिंक सॉलिड का, और कार्बन जो खुद है वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसने बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और उसने जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करा दिया। और कार्बन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, ये बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कराने में हेल्प करता है और वहां पर हमें जो मेटल है प्योर स्टेट में हमें मिल जाता है। और क्योंकि इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है दूसरे का रिडक्शन, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं और सब्सटेंस की रिड्यूसिंग करा देते हैं, रिड्यूस करा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा मेटल इस्तेमाल करते हैं और जो मेटल ऑक्साइड हमारे पास ऑलरेडी है उसमें से उस मेटल को रिमूव कराने के लिए, यानी कि मेटल ऑक्साइड में से मेटल को रिमूव कराने के लिए दूसरा कोई हाईली रिएक्टिव मेटल इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी मिडिल रेंज की एक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, तो इनको अगर रिमूव कराना है इनके ऑक्साइड में से, तो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से होने चाहिए? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई मेटल हमारे पास होना चाहिए। तभी अगर वो हाईली रिएक्टिव होंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, मिडिल रेंज वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, तभी वो उसके कंपाउंड में से उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह खुद चले जाएंगे और हम लोगों को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी मिल जाएगा। तो या तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करा सकते हैं प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए, या फिर हम लोग क्या करा सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल में से, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से निकाल के खुद उसकी जगह घुस जाएगा, और जैसे ही लेस रिएक्टिव मेटल अपने कंपाउंड में से निकला तो वो प्योर स्टेट में हमें मिल जाएगा। इसका भी एग्जाम्पल दिया है पेज नंबर 52 पर। मैंगनीज डाइऑक्साइड को अगर सॉलिड फॉर्म में हम रिएक्ट कराएं एल्यूमिनियम सॉलिड के साथ और हीट कराएं हम, तो हमें क्या मिलता है, हम लोगों को मिल जाता है मैंगनीज लिक्विड फॉर्म में और Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। और ये जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, इसी ने मैंगनीज, हमने यूज तो किया था सॉलिड फॉर्म में लेकिन जो हमें मिला है वो लिक्विड फॉर्म में मिला है, तो वो इसीलिए मिला है क्योंकि जो हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान वो सारी की सारी यूज हो जाती है मैंगनीज को पिघलाने के लिए, उसे मेल्ट कराने के लिए। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं पेज नंबर 52 पर, सबसे ऊपर मैंगनीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम के बीच का रिएक्शन, इसी में ये सारी बातें दिखाई गई हैं। और ये जो रिएक्शन है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी है, क्योंकि मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो गया है इनटू मैंगनीज लिक्विड और एल्यूमिनियम जो सॉलिड फॉर्म में पहले हमारे पास था अब वो ऑक्सीडाइज हो गया है और उसने बना दिया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है क्योंकि पहले सॉलिड फॉर्म में हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज किया था और एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में यूज किया था, लेकिन प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, प्रोडक्ट में हम लोगों को मैंगनीज डाइऑक्साइड में से मैंगनीज अपने ऑक्सीजन से अलग हो गया और वहां पर इंस्टेड ऑफ मैंगनीज एल्यूमिनियम ऐड हो गया। तो एल्यूमिनियम ने क्या किया, बेसिकली एल्यूमिनियम ने मैंगनीज डाइऑक्साइड के उस कंपाउंड में से मैंगनीज को हटाया, उसकी जगह खुद घुस गया और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना दिया। और इस रिएक्शन में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है ये क्या करती है, ये मैंगनीज को पिघला देती है। और इसी बात का हम इस्तेमाल करते हैं, जो ये हम लोग को एक चीज़ ऑब्जर्वेशन में मिल रही है कि जब हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है तो मैंगनीज लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है, मेल्ट मिलता है उसका, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका हम क्या करते हैं कि अगर कहीं पर रेलवे ट्रैक्स टूट गई हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम यही रिएक्शन कराते हैं और इस प्रोसेस को एक अलग नाम दे देते हैं, नाम होता है थर्मिट प्रोसेस या फिर थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जहां पर भी क्रैक आया होता है हमारे रेलवे ट्रैक्स में, वहां पर हम आयरन ऑक्साइड और लेड का रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हमने जो आयरन ऑक्साइड है उसका इस्तेमाल किया है सॉलिड फॉर्म में और एल्यूमिनियम या फिर लेड का इस्तेमाल हम करते हैं, सॉरी यहाँ पर हम आयरन या फिर लेड का यूज कर सकते हैं और उसके साथ हम लोगों को एल्यूमिनियम यूज करना होता है। तो यहाँ पर जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो कौन है, वो है एल्यूमिनियम, और लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं वो है लेड या फिर आयरन। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल का काम क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल का काम है कि वो लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड में से उसको रिमूव करे और उसकी जगह खुद घुस जाए। तो यहाँ पर हमने आयरन ऑक्साइड यूज किया है, उसमें से क्या होगा, आयरन ऑक्साइड में से जैसे ही हम इसको रिएक्ट करेंगे एल्यूमिनियम सॉलिड के साथ और थोड़ा हीट करेंगे तो क्या होगा कि एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड को कहेगा कि अब आयरन को बाहर निकाल देते हैं और इंस्टेड ऑफ आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं। और जो आयरन हमें बाहर निकल के मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, पिघला हुआ मिलता है। तो अगर हमारे पास पिघली हुई आयरन मिलेगी तो उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वापस से उसको हम कोई शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं और जहां भी रेलवे ट्रैक टूटी हुई होती है वहां पर शेप दे देते हैं, ठंडा करते हैं थोड़ी देर, और पिघली हुई आयरन से हम रेलवे ट्रैक जहाँ टूटी होती है उसको क्रैक को भरने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है थर्मिट रिएक्शन या फिर थर्मिट प्रोसेस। और इसकी रिएक्शन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पेज नंबर 52 पर दी भी हुई है। Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में अगर यूज करेंगे, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराएंगे टू एल्यूमिनियम सॉलिड, तो प्रोडक्ट होंगे 2 Fe लिक्विड और Al2O3 सॉलिड फॉर्म में, और हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, वही इस्तेमाल होती है आयरन को पिघलाने के लिए। मिडिल रेंज की एक्टिविटी वाले मेटल के बारे में बात करने के बाद हमने टॉप रेंज की जो एक्टिविटी वाले मेटल होते हैं उनके बारे में बात की थी। हमने समझा था कि ऐसे मेटल्स जो सबसे ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सच एज सोडियम या फिर एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, इनका हम क्या करते हैं, इनके जो कंपाउंड होते हैं इनसे हम प्योर मेटल कैसे प्राप्त करते हैं। तो अगर हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होंगे तो उनको हम हीट करा के ऑक्सीजन रिमूव नहीं करा सकते, या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस से हम इनका रिडक्शन भी नहीं करा सकते, या फिर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं करा सकते, क्योंकि ये खुद ही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो इनसे ऊपर तो कोई रिएक्टिव मेटल ही नहीं होता जो इनको इनके कंपाउंड से रिमूव करे, तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड हो या फिर दूसरे कंपाउंड्स हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम ना हीट करते हैं, ना हम लोग रिडक्शन करा पाते हैं, ना हम लोग किसी दूसरे मेटल के द्वारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा पाते हैं। हम यहाँ पर एक अलग तरीका अपनाते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मीनिंग बताया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग है बिजली का इस्तेमाल करके हमारे कंपाउंड को, जो इलेक्ट्रिकल स्पीशी हमने ली है, सॉरी केमिकल स्पीशी जो हमने ली है, उसका ब्रेकडाउन करवाना इनटू इट्स आयंस इज नोन एज लिसिस। और बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी केमिकल स्पीशी को तोड़ रहे हैं इनटू इट्स आयंस। तो यहाँ पर हम किसे तोड़ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है NaCl का। अगर आप लोग सॉल्ट ले लें, जो आपके घर में टेबल सॉल्ट होता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करें और इसमें से आपको अगर प्योर सोडियम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोडियम क्लोराइड जो है उसको पहले पिघलाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा, आपको सोडियम क्लोराइड को पिघलाना पड़ेगा। पिघला हुआ जो आपके पास सोडियम क्लोराइड होगा उसका आप लोगों के पास क्या करना है, आपको उसको एक बीकर में डालना है, उसमें दो रॉड्स लगाने हैं ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट के रॉड्स जो हैं इलेक्ट्रोड का काम करेंगी और बिजली पास कराने में मदद भी करेंगी। उसके बाद आपने सेल से कनेक्ट कर देना है और बिजली पास करानी है। जो सोडियम क्लोराइड का घोल है, यानी कि मेल्ट है, घोल भी नहीं है, उसमें पानी नहीं ऐड हुआ है, प्योर सोडियम क्लोराइड ही है लेकिन वो पिघला हुआ है। तो ऐसे पिघले हुए NaCl में भी क्या होता है, NaCl ब्रेक डाउन कर चुका होता है इनटू Na+ एंड Cl-। तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रोड्स आपने लगाए हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, एनोड के ऊपर तो क्या होगा, क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी और कैथोड के ऊपर सोडियम प्योर फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रोलिटिक का मीनिंग तो आपको पता है, बिजली की मदद से किसी भी आयनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन कराना। अब रिडक्शन यहाँ पर कहाँ हो रहा है, यहाँ पर तो हम ऑक्सीजन रिमूव करा नहीं रहे NaCl में से, लेकिन रिडक्शन कैसे हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सोडियम आयन जो है Na+ जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और सोडियम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी कभी किसी कटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो उसे भी हम रिडक्शन ही कहते हैं। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन आपको याद रखनी है रिडक्शन की, कि अगर किसी कटायन के साथ एडिशन हो इलेक्ट्रॉन का तो हम कहेंगे कि वहां पर रिडक्शन हो गया है उस कटायन का। और बिल्कुल ठीक इसका रिवर्स जो होता है वो ऑक्सीडेशन के लिए होता है, कि अगर किसी अनायन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे उस अनायन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन के अनायंस का। तो सिर्फ आयंस की भी बात ना करी जाए, अगर ऐसे ही सिंपली कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन किसी को प्राप्त होता है तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया है, और किसी सब्सटेंस में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो है वो रिडक्शन करवाता है और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेशन कराता है। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अबाउट रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अभी देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है, आप लोगों को जो मेटल मिला है अभी तक, जो आप लोगों ने रोस्टिंग कराई है, फिर कैल्सिनेशन कराया है, उसके बाद आप लोगों ने मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन कराया है, या फिर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई है, और लास्ट में आप लोगों ने जो मेटल प्राप्त किया है वो अभी भी उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं थोड़ी बहुत, तो हमको क्या करना होता है कि लास्ट में जो हमें ये प्योर फॉर्म में मेटल मिला है जिसके अंदर अभी भी हल्की बहुत इम्प्योरिटीज हैं, उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए ही हम लोगों को मेटल की रिफाइनिंग करनी है, मतलब और भी अच्छे से उसे फाइनली हमें प्राप्त करने के लिए उसको और थोड़ा साफ करना है, तो यहाँ पर हमें रिफाइनिंग करनी होती है। तो व्हाट इज रिफाइनिंग? रिफाइनिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस विच इज यूज टू रिमूव द इम्प्योरिटीज विच आर स्टिल प्रेजेंट, एंड दस रिफाइनिंग हेल्प्स अस टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स फ्रॉम द इम्प्योर मेटल्स। और यहाँ पर भी हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, तो हम यहाँ पर अगेन इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और रिफाइनिंग कर रहे हैं। अब जैसे ही आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है ना, तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए कि यहाँ पर जरूर आयनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब किस तरीके से हो रहा है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताती हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में कहाँ पर आयन्स होते हैं और किस तरीके से हम ये प्रोसेस करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि रिडक्शन कराने के बाद या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने के बाद जो मेटल हम लोगों को मिला है उसको हम लोग ले लेते हैं, सच एज कॉपर या फिर जिंक या फिर टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, जो भी मेटल्स आपको मिले हैं उसको आप लोग ले लेते हैं। और क्या करते हैं, आप इस इम्प्योर मेटल का बनाते हैं एनोड। आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस करके प्रोसेस का नाम बोला है, तो इसमें आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा होगा कि बिजली का यूज करना है तो हमें कैथोड और एनोड बनाने होंगे, और एक सोल्यूशन भी हमें चाहिए जिसमें हमें कैथोड और एनोड को डिप करना होगा, डुबाना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, हमने जो एनोड बनाया है वो इम्प्योर मेटल का बनाया है, उस मेटल का जो हम लोगों को रिडक्शन करा के या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के एंड में जो मिल रहा था अभी तक, उस मेटल को हमने लिया और उससे बना दिया एनोड। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कैथोड बनाया उसी मेटल के बिल्कुल ही प्योर फॉर्म से। ऑलरेडी हमारे पास एक प्योर फॉर्म होना चाहिए जिसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो कैथोड बनाने के लिए हमें मेटल का बिल्कुल प्योर फॉर्म चाहिए और एनोड बनाने के लिए हमें इम्प्योर मेटल चाहिए। तो कैथोड और एनोड का काम हो गया। अब सॉल्यूशन जो हमें चाहिए होता है वो उसी मेटल का कोई भी सॉल्ट हमें चाहिए होता है पानी में घोला हुआ। सो हम कह सकते हैं कि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए होता है उसी मेटल के कोई से भी सॉल्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कॉपर का करा रहे हो, आप कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा रहे हो, कॉपर साफ कर रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप लोग इम्प्योर कॉपर का बना दोगे एनोड, और आप लोग क्या करोगे कि जो प्योर कॉपर की स्ट्रिप होगी उसका आप कैथोड बना दोगे, और सॉल्यूशन आप लोग लोगे कॉपर के किसी भी सॉल्ट का, सच एज कॉपर सल्फेट, इस तरीके से कोई सा भी सॉल्यूशन आप लोगे जिसमें आपने कॉपर का कोई सॉल्ट मिलाया हुआ होना चाहिए, घोला हुआ होना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप जैसी बिजली पास कराते हैं तो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है, यानी उसमें आपने क्या लिया था, आपने उस मेटल का सॉल्ट लिया था, उसमें से ब्रेक डाउन हो जाता है। जो मेटल का सॉल्ट आपने लिया है जैसे ही आप उसे पानी में घोलेंगे तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और आयन्स बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बन जाएंगे। अगर आपने कॉपर सल्फेट लिया है, फॉर एग्जांपल आप कॉपर की रिफाइनिंग करा रहे हैं, तो इसमें कॉपर सल्फेट में क्या होगा, Cu2+ और SO4 2- में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो Cu2+ है ये क्या करेगा, ये एनोड पर जाएगा और रिडक्शन करा के, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके, और वहां पर ये सेटल हो जाएगा। तो Cu2+ जो है उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए क्योंकि उसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज थे, उसे कम करना है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिड्यूस हो जाएगा और एनोड पे जाके जम जाएगा। एनोड पे आपने क्या किया था, सॉरी कैथोड पे जाके जम जाएगा, क्योंकि जो रिडक्शन होता है वो कैथोड पे होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या किया हुआ है, आपने जो सोल्यूशन लिया है मेटल का सॉल्ट का, उसमें से मेटल के जो पॉजिटिव वाले आयन्स होंगे, कटायंस जो होंगे, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और जाके कैथोड पे जम जाएंगे। कैथोड पे आपने, आपको ध्यान होगा, अपनी प्योर मेटल की स्ट्रिप ली हुई थी, तो इससे क्या हो रहा है कि आप लोगों को प्योर मेटल बढ़ता हुआ मिल रहा है। आपने एक पतली स्ट्रिप अगर ली थी तो एंड में जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आपको बहुत मोटी स्ट्रिप मिल जाएगी। और ये मोटी स्ट्रिप क्यों मिली, क्योंकि आप क्या करा रहे हैं, आप बेसिकली जो आपने मेटल का सॉल्ट लिया है, सॉल्यूशन बनाया है, उससे उसमें से कटायन जो है हमारे मेटल का, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है और कैथोड पे वो जमता चला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी को प्योर मेटल मोटे रूप में मिल रहा है और भी ज्यादा कलेक्ट होता जा रहा है। अब कैथोड पे तो रिडक्शन हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे आपने क्या लिया है, आपने एनोड पे लिया हुआ है इम्प्योर मेटल। तो वहां पर क्या होगा, इम्प्योर मेटल जो आपने एनोड पे लिया है उसमें से मेटल बार बार ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा। मतलब सोल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्ट है वो टूटा हुआ है, कॉपर 2+ और SO4 2- में टूटा हुआ है, और धीरे धीरे करके कॉपर जो है वो जाके कैथोड पे जम रहे हैं, Cu2+ जो है वो कैथोड पे जाके जम रहे हैं। अब उसमें तो सोल्यूशन में तो कॉपर आयन्स की कमी हो जाएगी, जिसकी पूर्ति करने के लिए जो एनोड आपने इम्प्योर फॉर्म में मेटल लिया है उसमें से कॉपर निकलने लगते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। आपने इम्प्योर जो कॉपर लिया हुआ है उसमें से क्या होता है, कॉपर वो 2+ बनाता है और सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है। तो जो कमी होती चली जा रही थी सोल्यूशन के अंदर से कॉपर आयन्स की, वो पूरी होती है फ्रॉम द इम्प्योर मेटल विच इज यूज एज एनोड। और क्योंकि हम लोगों ने एनोड पे तो इम्प्योर मेटल यूज किया था, तो क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल है उसकी जो इम्प्योरिटी है वो जैसे जैसे कॉपर आयन्स पानी में घुलते चले जाते हैं, सोल्यूशन में घुलते चले जाते हैं, तो इम्प्योरिटी जो होती है वो अकेली पड़ जाती है और नीचे सेटल हो जाती है। जो भी बीकर आपने लिया हुआ है एनोड के नीचे, वो जमीन पे बेस पे सेटल हो जाती है, सतह पे सेटल हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं एनोड मड। तो यहाँ पर आपको लिखी गई है, एक लाइन लिखी गई है पेज नंबर 53 में, बिल्कुल इनिशियल जो लाइन्स है उसमें देखो, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इन टू द सोल्यूशन। अगर इम्प्योरिटी सोल्यूशन में घुल जाए तो वो क्या होगी, वो सोल्यूबल होगी, लेकिन वो इम्प्योरिटी जो इनसोल्यूबल होती है वो क्या करती है, वो बॉटम पर एनोड के नीचे जम जाती है, जिसे एनोड मड कहते हैं। राइट, तो आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं पेज नंबर 53 पर जो क्वेश्चंस है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल ओर एंड गैंग्यू। अभी देखो मैंने आप लोगों को बोला था ना, आप लोगों से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को मिनरल ओर और गैंग्यू की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे इन टेक्स्ट में या फिर एक्सरसाइज में पूछ रहे हैं, इसका मीनिंग है कि सिमिलर क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में भी पूछेंगे। तो यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 49 पर, आप लोगों को मिनरल्स का और ओर्स का डेफिनेशन दिया गया था। आप लिखोगे द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर नेचुरली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। ये तो मिनरल्स की डेफिनेशन हो गई। अब आप लोग लिखेंगे ओर्स की डेफिनेशन, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। तो ये मिनरल और ओर की डेफिनेशन आप पेज नंबर 49 से लिख देंगे। अब पेज नंबर 50 पर आ जाओ, यहाँ पर आप लोगों को गैंग्यू की डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर जो आप लोगों को टॉपिक दिया गया है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, बिल्कुल उसी के नीचे है पेज नंबर 50 पर। इसमें देखो, इसमें लिखा है ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल सैंड एटसेट्रा कॉल्ड गैंग्यू। सो सॉइल सैंड एटसेट्रा जो इम्प्योरिटीज है इसी को गैंग्यू कहते हैं। तो यही डेफिनेशन आपको गैंग्यू की लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। बोल रहे हैं कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जो फ्री स्टेट में हम लोग को मिल जाता है नेचर में। तो आप लोगों को ध्यान होगा हमने बात की थी कि वो मेटल्स जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो हम लोग को फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम। तो आप इन्हीं का नाम लिख देंगे, तो आपको दो ही मेटल बोले हैं, तो आप गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम में से कोई से भी दो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो बहुत सारे प्रोसेसेस है, अगर किसी मेटल को हमें उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना है तो या तो हम सीधे सीधे हीट कर सकते हैं, अगर वो मेटल ऐसा है जिसकी रिएक्टिविटी वेरी लेस है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या करता है, उसमें हम उसको डायरेक्टली हीट करते हैं तो भी उसमें से ऑक्सीजन की जो गैस होती है वो ऑक्सीजन की गैस के रूप में निकल जाती है और प्योर मेटल हम लोगों को मिल जाता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास मिडिल रेंज की एक्टिविटी वाला मेटल है और उसका ऑक्साइड है, तो उसके केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो कार्बन से उसका रिडक्शन कराना पड़ेगा या फिर दूसरे रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराना पड़ेगा। अब तीसरा तरीका है उनके लिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, अगर उनका ऑक्साइड है तो ना तो वो हीट करने से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और ना ही वो किसी और कंपाउंड से रिड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ता है। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ता है, मिडिल रेंज की एक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं उनका या तो हम रिडक्शन करा सकते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा सकते हैं। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, अगर उनका ऑक्साइड है तो हम उन्हें डायरेक्टली हीट भी करेंगे तो उनसे उनका ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको ध्यान होगा कोरोजन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है। इसमें आपने पढ़ा था कि सिल्वर आर्टिकल जो हमारे चांदी की चीज़ें होती हैं, जब वो काली काली सी हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि उसकी रस्टिंग हो गई है। और वहाँ पर उसकी रस्टिंग इसलिए हुई है क्योंकि सिल्वर जो है, जो चांदी है हमारा, उसने क्या किया है, उसने हवा में मौजूद जो सल्फर है उसके साथ रिएक्शन कर ली है और सिल्वर का सल्फाइड बना दिया है। और यही जो सिल्वर सल्फाइड है ये ब्लैक कलर की होती है, तो यहाँ पर हम इसको रस्टिंग कहते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन हम लोग कॉपर के रिस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं, कॉपर के आधार पे भी बोल सकते हैं कि अगर कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है कुछ समय बाद तो उसकी भी रस्टिंग हो गई है। तो वहां पर क्या हुआ है, कॉपर ने रिएक्ट कर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि मॉइस्चर वाले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉपर ने रिएक्ट किया है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ गई है। और ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग है ये बेसिकली किस वजह से है, कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से होती है। अब हमने आयरन के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। मोस्टली जो कोरोजन होता है उसमें अगर रस्टिंग आपको पढ़ाएं तो उसमें आयरन के बारे में सबसे ज्यादा बताया जाता है कि आयरन जो है अगर उसको मॉइस्ट एयर के पास, मतलब कि ऑक्सीजन के पास, वहां पर H2O भी होना चाहिए, पानी के कुछ कण भी होने चाहिए, ऐसी जगह पर अगर आप लोग आयरन को लंबे समय तक रखेंगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की फ्लेकी कवरिंग आ जाती है एंड दिस इज कॉल्ड रस्ट। तो फ्लेकी माने पपड़ी, पपड़ी जैसा आप लोगों को ब्राउन कलर का कुछ दिखने लगता है आयरन के ऊपर अगर हम बहुत समय तक उसे बाहर रखें जहां मॉइस्चर ज्यादा हो और ऑक्सीजन ज्यादा हो, तो वहां पर उसमें जंग लग जाती है एंड दिस इज कॉल्ड रस्ट। तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, आयरन कब रस्टिंग करता है ये समझने के लिए एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 3.14। इसमें आप लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब का अलग अलग इस्तेमाल करना है। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर आपने क्या करना है, आपने लोहे की कीले डाल देनी है और उसमें पानी डाल देना है। इतना पानी आप डालिए कि लोहे की कीले एटलीस्ट आधी तो डूब जाए, कम से कम आधी तो वो डूब जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉर्क की सहायता से टेस्ट ट्यूब को पैक कर देना है। अब दूसरा टेस्ट ट्यूब लो, बी टेस्ट ट्यूब जो है इसको लो। इसमें क्या करो, इसमें भी फिर से लोहे की कीले डालो, पानी से पूरा इसको भी डुबा दो और उसके ऊपर थोड़ा तेल ऐड कर दो, उसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे ऑयल ऐड कर दो और अगेन आप लोग वापस से कॉर्क से टेस्ट ट्यूब को बंद कर दो। ऑयल डालने के पीछे कारण है, कारण क्या है कि आपको पता है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अगर आप लोग पानी के सरफेस पर तेल रख दें तो क्या होता है, तेल जो होता है वो एक तरीके से ऑक्सीजन को पानी के अंदर पहुंचने नहीं देगा। तो इसीलिए या फिर इस टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या किया है, पानी के ऊपर तेल डाल दिया है ताकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पानी तक कट ऑफ हो जाए, वहां पे पहुंचने ना पाए। अब लास्ट वाली जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब सी, उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने डालने हैं आयरन की वापस से कीले डाल देनी है और उसमें आपने आयरन की कीलों के साथ में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालना है। कैल्शियम क्लोराइड एक सब्सटेंस है जो कि हवा से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो आपको टेस्ट ट्यूब सी में कैल्शियम क्लोराइड डालना है और लोहे की कीले डालनी है, टेस्ट ट्यूब को अगेन पैक कर देना है कॉर्क की सहायता से, बिल्कुल अच्छे से सील पैक कर देना है। अब कुछ दिनों के बाद जब आप अपने टेस्ट ट्यूब्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये पाओगे कि टेस्ट ट्यूब ए में तो आपने लोहे जो देखे, लोहे की कील जो देखी, उसमें जंग लग गई थी, लेकिन टेस्ट ट्यूब बी और सी में जंग नहीं लगी थी। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये समझ में आता है कि अगर जंग लगवानी है लोहे में तो वहां पर ऑक्सीजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए और पानी भी, सॉरी ऑक्सीजन भी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में जो था, पानी तो था लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई हमने कट ऑफ कर दी थी क्योंकि हमने ऑयल की लेयर डाल दी थी। और टेस्ट ट्यूब सी में ऑक्सीजन तो था लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी। कैसे नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने कैल्शियम क्लोराइड के एनहाइड्रस वहां पर बॉल्स डाले हुए हैं और ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, ये खुद ही मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है, तो आयरन के पास कोई मॉइस्चर नहीं बचेगा क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड ने सारा का सारा मॉइस्चर खुद ले लिया है। तो टेस्ट ट्यूब सी में क्या हुआ, वहां पर मॉइस्चर नहीं है, ऑक्सीजन खूब है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि टेस्ट ट्यूब ए में दोनों की दोनों चीजें हैं, ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर भी है, इसीलिए वहां पर जंग लगी है। तो अगर आपको जंग लगवानी है लोहे में तो उसके लिए आपको वहां पर ऑक्सीजन भी देना पड़ेगा और मॉइस्चर भी देना पड़ेगा। अभी अगर हम लोगों को पता है रस्टिंग करवानी है तो वहां पर मॉइस्चर और ऑक्सीजन होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि हम रस्टिंग से कैसे बचाएं, कोरोजन से अपने मेटल्स को कैसे बचाएं। तो अगर रस्टिंग से बचाना है लोहे को या फिर किसी और मेटल को हम लोगों को बचाना है कोरोजन से, तो अगर सिर्फ रस्टिंग के बारे में बात करें, लोहे की रस्टिंग के बारे में बात करें, तो हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ऑयल चढ़ा सकते हैं, ग्रीस चढ़ा सकते हैं, गैल्वनाइजिंग कर सकते हैं, क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं या फिर एलॉय बना सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं। इसमें से आप लोगों को पेंटिंग तो समझ में आ रहा होगा, उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो क्या होगा, आयरन की कोरोजन काफी हद तक कम हो जाएगी। ऑयल चढ़ा देंगे, ऑयलिंग करते रहेंगे टाइम टाइम पे, तब भी हमारा जो आयरन है उसकी कोरोजन से हम उसको बचा सकते हैं। ग्रीसिंग का मीनिंग भी है ये, ग्रीस लगाना या फिर तेल वाली कोई चीज लगाना, तो या फिर ये कर सकते हैं। गैल्वनाइजिंग के बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो गैल्वनाइजिंग क्या होता है? गैल्वनाइजेशन एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे मेटल सच एज आयरन और स्टील, इनको रस्टिंग से बचाने के लिए इनके ऊपर हम एक पतली लेयर चढ़ा देते हैं जिंक की। तो उससे क्या होगा कि अगर जो जिंक है वही संपर्क में आएगा मॉइस्चर के या फिर ऑक्सीजन के। आयरन या फिर स्टील जो है वो मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, संपर्क में नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो पतली लेयर चढ़ा दी जिंक की। और इससे क्या होगा कि हमारे आयरन की और स्टील की रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी, रस्टिंग नहीं होने पाएगी। गैल्वनाइजिंग में क्या होता है, गैल्वनाइजेशन में हम लोग जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, क्रोम प्लेटिंग में क्या होता है क्रोम की लेयर चढ़ाते हैं, क्रोमियम भी एक मेटल होता है, तो उसकी लेयर जब चढ़ा देते हैं तो उसको क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। और एनोडाइजिंग के बारे में आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एनोडाइजिंग में हम क्या कराते थे, हम हमारे मेटल के ऊपर मोटी ऑक्सीजन की लेयर चढ़वाते थे ताकि उसका क्या हो, फर्दर रिएक्शन ना होने पाए। तो उसके बाद लास्ट बच जाता है अलॉयज। तो अलॉयज के बारे में हमने समझना है कि अलॉयज क्या होते हैं। अगर अलॉय बनाए तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारे लोहे को बचा सकते हैं रस्टिंग होने से। तो अलॉयिंग इज अ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। एक मेटल की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो विशेषताएं हैं, उसको और इम्प्रूव करने की जो मेथड है उसे अलॉयिंग कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी मेटल हमारे पास है या तो उसमें कोई दूसरा मेटल मिक्स कर देते हैं या कोई दूसरा नॉन मेटल भी हम मिक्स करा सकते हैं। अब हम ये मिक्स कैसे कराते हैं, हम क्या करते हैं मेटल को पिघला देते हैं, उसमें दूसरा अगर मेटल मिक्स कर रहे हैं तो दोनों मेटल्स को पिघला देते हैं और इनको इक्वल प्रपोर्शन में, जितना भी प्रपोर्शन हमें चाहिए रेशियो ध्यान में रख के मिक्स कर देते हैं, वापस ठंडा होने देते हैं, और जो नया हम लोगों को कॉम्बिनेशन मिलता है उसे अलॉय कहते हैं। और अगर हम मेटल के साथ कोई नॉन मेटल डाल रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने मेटल को पिघलाएंगे, उसमें नॉन मेटल को ऐड करेंगे, ठंडा होने देंगे, वापस से जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा उसे अलॉय कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज अलॉय, अलॉय इज अ मिक्सचर, और वी कैन से अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। यहाँ पर देखो आप लोगों को डेफिनेशन दी गई है, पेज नंबर 54 पर आप देखो, ये जो पैराग्राफ है अलॉइंग से शुरू हो रहा है, इस वाले पैराग्राफ की 10th लाइन देखो, इसमें लिखा है एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, पहले वाले मेटल को पिघलाते हैं, एंड देन वी डिजॉल्व द अदर एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ये जैसे कि मेटल या फिर नॉन मेटल कुछ भी इनमें से, उसको हम बराबर मात्रा में जो भी प्रपोर्शन हमारे पास है उस हिसाब से हम डालते हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ठंडा होने के बाद दैट इज कॉल्ड एन अलॉय। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल है स्टील। आप लोगों को पता होगा आपके घरों में स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, आप लोग खाना वाना बनाने के लिए स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टील है ये कैसे बनी है, स्टील बनी है आयरन के अंदर कार्बन मिक्स करने से। जो आयरन है अगर उसके अंदर हम कार्बन की कुछ प्रपोर्शन मिक्स कर देंगे तो हमें स्टील मिलता है। सो बेसिकली स्टील इज ऑल्सो एन अलॉय, स्टील जो है वो एक अलॉय है। किसके किसका अलॉय है, आयरन और कार्बन का अलॉय है। तो ये तो स्टील है। नॉर्मली भी अगर हम लोग आयरन को यूज करते हैं तो हम प्योर आयरन कभी यूज नहीं करते हैं, हम उसके अंदर थोड़ा बहुत कार्बन मिक्स कर ही देते हैं। नॉर्मली 0.05% कार्बन मिक्स कर देते हैं हम लोग और तब हम लोग यूज करते हैं आयरन का, प्योर स्टेट में कभी यूज नहीं करते हैं। और अगर हम लोग को स्टेनलेस स्टील बनाना है, आप लोगों के घरों में जो चमकदार नल होता है या फिर वॉश बेसिन जो लगा होता है हमारे किचन में, एकदम चमकता हुआ शाइनिंग होता है, वो क्या होता है, वो स्टेनलेस स्टील होता है। और वो कैसे बनता है, वो बनता है आयरन और क्रोमियम को मिक्स करके या फिर निकल को मिक्स करके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन को निकल और क्रोमियम, ये दोनों मेटल्स हैं, निकल और क्रोमियम भी मेटल्स हैं, तो निकल क्रोमियम और आयरन इन तीनों को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। वो जो नया मेटल बन रहा है वो स्टेनलेस स्टील कहलाता है और इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। रस्टिंग इसमें नहीं होती है, चमकदार रहता है काफ़ी लंबे समय तक, मजबूती भी इसकी बढ़ जाती है। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि अगर किसी मेटल में कोई दूसरा मेटल या फिर नॉन मेटल ऐड किया जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा बदल जाती हैं। इनफैक्ट इतनी बदल जाती हैं कि जो प्योर मेटल है आपके पास वो ऐसा होगा जो बिजली कंडक्ट करता है, और जो आपके पास एलॉय होगा वो ऐसा होगा कि वो बिजली बिल्कुल नहीं कंडक्ट करता है, या फिर ऐसा होगा जो बिजली बहुत कम कंडक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल समझो, कॉपर जो मेटल होता है, कॉपर को आपको पता है कॉपर की वायर्स बनाई जाती हैं, बिजली की वायर्स बनाई जाती हैं कॉपर से। लेकिन अगर हम लोग कॉपर को मिक्स कर दें जिंक के साथ, तो वहां पर जो एलॉय बनता है वो होता है ब्रास, पीतल कहते हैं इसे नॉर्मल भाषा में। तो ये जो ब्रास है ये कैसे बनाई, ये कॉपर और जिंक को मिक्स करने से एलॉय बनाया है हमने, जिसका नाम रखा है ब्रास। ये जो ब्रास होता है ये नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कॉपर अगर प्योर स्टेट में लें तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो एलॉय देख रहे हो आप लोग, दूसरा मेटल मिक्स करते ही कॉपर की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। और एक और एलॉय है कॉपर का, विच इज ब्रॉन्ज, और ये कैसे बनता है, कॉपर को टिन में मिक्स करने से बनता है। टिन भी एक मेटल है, और कॉपर और टिन को अगर मिक्स करें तो ब्रॉन्ज मिलता है हम लोगों को। तो जनरली जो अलॉयज होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट जाती है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो भी घट जाती है। और यहाँ पर जो मरकरी मेटल है, मरकरी नाम का जो मेटल है, अगर उसका किसी भी तरीके से अलॉय बनाए तो उसका नाम होता है एमलगम। तो हम कह सकते हैं कि मरकरी के जो अलॉयज होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एमलगम। एक और एग्जाम्पल है सोल्जर, अगर आप सोल्डर करते हैं, आप लोगों को पता होगा सोल्डर कैसे करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उन्हें अगर जोड़ना हो, उनकी वेल्डिंग करनी हो, तो हम लोग वहाँ पर सोल्डर इस्तेमाल करते हैं। सोल्डर इज ऑल्सो एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, ये जो सोल्डर होता है ये भी अलॉय है लेड और टिन का, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, आसानी से बहुत कम तापमान पर पिघल जाता है, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं वायर्स जो होती हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स उनको आपस में चिपकाने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए। अब कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताई गई हैं, ये यहाँ पर हैं ऑरेंज कलर की जो बॉक्सेस हैं पेज नंबर 54 पर। प्योर गोल्ड जो होता है वो होता है 24 कैरेट गोल्ड, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि इससे हम ज्वेलरी नहीं बना सकते। आप लोग जो ज्वेलरी बनाते हो, जो गहने बनवाते हो सोने के, वो 24 कैरेट का नहीं होता है, उसमें हमेशा कोई ना कोई दूसरा मेटल मिक्स किया जाता है, या तो चांदी मिक्स करते हैं या फिर कॉपर मिक्स करते हैं। और वहां पर जो होता है आप लोगों को एक तरीके से अलॉय दिया जाता है गोल्ड का। अभी जब हम लोग किसी मेटल का अलॉय बनाते हैं तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि जो हम दोनों मेटल्स यूज कर रहे हैं उसको हम इक्वल यूज करें, एक प्रपोर्शन होता है, एक रेशो होता है, वो किस तरीके का भी हो सकता है, एक मेटल ज्यादा दूसरा कम, दोनों बराबर, इस तरीके से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग बनाते हैं, प्योर गोल्ड नहीं होता है हमारे पास, तो गोल्ड का अलॉय होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं 22 कैरेट मोस्टली यूज होता है हर जगह। 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्ट्स तो प्योर गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट जो होता है वो कॉपर या फिर सिल्वर हो सकता है। इसका मीनिंग है कि मान लो आपके पास अगर 24 ग्राम गोल्ड है और वो 22 कैरेट का है, तो इसका मतलब है कि उसमें 22 ग्राम जो है वो तो प्योर गोल्ड है और 2 ग्राम जो है उसमें कॉपर या फिर सिल्वर मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो गोल्ड होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, अलॉय बनाया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को बताया गया है, दूसरा वाला जो ऑरेंज कलर का बॉक्स है पेज नंबर 54 पर, इसमें आप लोगों को जो हमारा आयरन पिलर है उसके बारे में बताया गया है। आयरन पिलर बहुत खास है, इसलिए खास है क्योंकि ये बहुत सालों पहले बना है, 1600 ईयर्स अगो ये बना है, लेकिन बावजूद इसके भी आज तक इसमें जंग नहीं लगी है। तो इसमें कुछ खास बात है जिसकी वजह से इसमें जंग नहीं लगती, वो खास बात यह है कि ये आयरन प्योर आयरन नहीं है, ये अलॉय है। इसमें बहुत सारे अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स मिक्स करके इसको बनाया गया है, इस वजह से इसमें जंग नहीं लगती, क्योंकि ये प्योर आयरन है ही नहीं। और आप सोच सकते हैं कि इंडिया में हम लोगों के जो लोग थे, जो रिसर्चर्स थे, वो कितने ज़्यादा एडवांस सोच के थे, उनकी कितनी ज़्यादा नॉलेज पहले से ही बहुत ज़्यादा थी कि उन्होंने बहुत सालों पहले 1600 ईयर्स अगो ही एलॉय बनाना शुरू कर दिया था। और ये जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास में है बना हुआ, और ये 8 मीटर लंबा है और इसका वजन अप्रॉक्सीमेटली 6000 kg है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें जंग नहीं लगती, बिकॉज इट इज एन अलॉय। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं, इंटेक्स क्वेश्चन 2-3 बचे हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और आपने क्या करना है, अभी जो आज पढ़ा है आपने उसको रिवाइज कर लेना है। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आए तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।